جیسا کہ بھگت سماج نے سنا کہ پورن پرماتما کبیر صاحب ہیں اور یہ بھگت کے اپنی پیاری آتما کے جو ودھیوت سادھنا کرتے ہیں شاستر انکول پوجا کرتے ہیں ان کے شواسوں کو بڑھا کر ان کی آیو بڑھا دیتا ہے اور اپنی کرپا سے اپنے آشیرواد پرساد سے جیو کو ستلوک لے جاتا ہے. ایک سمے کی بات ہے کبیر پرمیشور ستسنگ کر رہے تھے, وہاں پر ایک دھرموتی نام کی ایک بہن شری دامودر جی ساہا کی پتنی ستسنگ سننے چلی گئی اور ستسنگ کو سن کر اس کی آتما میں پربھو کی تڑپ جاگ اٹھی اور وہ بھی پورن پرماتما کے مکھ سے نکلے ہوئے وچن ہردے میں سما رہے تھے. ستسنگ کے اندر کبیر صاحب بتا رہے تھے یہ سودا پھر نہ ہی سنتو یو سودا پھر نہ ہی یہ لوہے کے ساتاب جات ہے کایا دے سراہی. یہ مانو شریر یہ بار بار نہیں ملے گا, بہت ہی مشکل ہے اس کی پراپتی. اور مانس جنم جن کو ملا ہوا ہے وہ بھکتی نہیں کرتے, بھکتی کرتے ہیں تو شاستر ورودھ کرتے ہیں, وہ بھی نا کے سمان ہے. یہ سودا پھر نہ ہی سنتو یو سودا پھر نہ ہی, سودا مانے اس منس جنم سے جو لابھ اٹھانا ہم نے, یہ مول پونجی ہمیں ملی ہوئی ہے. مان لیجئے کسی کو کوئی گورنمنٹ لون دیتی ہے 2 لاکھ روپے اور اس کو کہا کہ بھی تو اپنے کوئی بزنس ویپار کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو سفل کر اور پھر لون ہمارا واپس کر دینا, آپ کو کچھ سبسڈی بھی دے دیں گے. اور وہ نادان پھر اس کی غفلت میں دارو پیوے شراب پیوے اور اپنا وہ سودا نہ کرے, وہ ویپار نہ کرے, وہ بزنس نہ کرے تو کیا ہوگا کہ وہ پھر کنگال ہو جائے گا, گورنمنٹ اس کے لون کے کارن اس کی کوئی نہ کوئی چیز کو اپنے قابو میں کرے گی, وہ کنگال ہو جائے گا. اسی پرکار یہ 700 روپی پونجی پربھو کبیر صاحب نے ہمیں پردان کی ہوئی ہے. اور یدی ہم منس شریر پا کر کے پربھو کی بھکتی نہیں کریں گے تو ہم ہانی میں رہیں گے. اور جو ودھیوت سادھنا کرتے ہیں پورے سنت کی شرن میں آ کے اپدیش لے کر کے اپنی بھکتی کرتے ہیں اور سب نیموں کو نبھاتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی بھکتی کر رہے ہیں تو سمجھو وہ اپنے اس مول سواسوں روپی پونجی کو دگنا تگنا چگنا ارتھات اپنی پروگرس کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. وہ ساہوکار ہوں گے, وہ سیٹھ ہو جائیں گے. اور جو بھکتی ڈھنگ سے نہیں کرتے, کرتے ہیں تو شاستر کے ورودھ کرتے ہیں, سراد نکالنا, پتر پوجنا, دیوی دیوتاؤں کی آن اپاسنا کرنا, یہ ست آنی کے لابھ کے ستھان پر ہانی دیتے ہیں. گیتا جی کے 16 ادھیائے کے انتیم سلوک 23 اور 24 میں اس میں لکھا ہے کہ ارجن یوگ, یوگ کا ارتھ ہوتا بھکتی. یہ بھکتی جو ہے نہ تو جو شاستر ورودھ سادھنا کرتے ہیں ان کی کبھی سفل نہیں ہو سکتی, نہ تو ان کو سدھی پراپت ہوتی ہے کوئی, اور نہ ہی کوئی ان کو پرم گتی ارتھات وہ ویرتھ ہوتی ہے. یہ دیکھیے گا, ان شاستروں کے انوسار ہم نے چلنا پڑے گا. اور جو شاستروں کے ورودھ سادھنا کرا رہے ہیں وہ سمجھو آپ کو آؤٹ آف سلیبس پڑھا رہے ہیں, پاٹھیہ کرم سے باہر کی آپ کی پڑھائی شروع کر رہے ہیں, وہ ہانی دے گی, لابھ نہیں دے سکتی. آدرنیہ گیتا جی ये होली बुक गीता देखिएगा, नीचे इसका 23वां श्लोक है। 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, यह माने जो व्यक्ति साधक विधि, शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो गीता में गीता बोली जा रही है, वेदों को शास्त्र आधार मानकर, जो वेद हमारे मूल शास्त्र है, उसके बाद सब अन्य शास्त्र बने हैं, इसलिए वो शास्त्र वेद है और वेद ही गीता भी उसी का अंश है। यहाँ देखिएगा 24 में लिखा कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में, व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो भक्ति विधि करनी है, नहीं करनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जो कर्म बुरे हैं वो त्यागने हैं, अच्छे करने हैं, ये तुझे ये शास्त्र बताएंगे। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने, तुझे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। तेरे लिए ये शास्त्र अनुसार साधना करो। अब गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी, वो मूर्ख लोग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा और उससे नीचे की, ये हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। अब तीनों गुणों तक की पूजा को गीता में मना किया है। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जैसा कि दास ने आपको भी बताया था। और देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित आपको दिखाया था। अब इसमें देखिएगा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के प्रथम और द्वितीय श्लोक में अध्याय ये है, अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखः, ऊपर ने जड़ वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखाओं वाला, अश्वत्थम माने अश्वघोड़े की तरह मजबूत वृक्ष, शक्तिशाली प्राहु कहा जाता है, अवयम माने यह अविनाशी, छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेद वितः। इस ऊपर के जड़ वालों को, नीचे की शाखा वाले इस विस्तृत वृक्ष को, जो संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, उस अज्ञान अंधेर में छुपे हुए उस जिसको कोई नहीं जानता, उसको जो जानता है सह वेदवित है, वह सही ज्ञानी है। सीधा लिखा कि वो है वो वेदवित, वेद का सही ज्ञान का जानने वाला वो संत जो इसको सही जानता है। उसके बारे में 34 अध्याय का और 32 श्लोक में लिखा है कि 34वें श्लोक में कि उस संत ने ढूंढ ले जो इस परम तत्व के जानने वाला हो। अच्छा, ऊपर आदि परमेश्वर रूप मूल वाला, इसका सीधा है ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्वम मूलम, दूसरी बात ही नहीं है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा दे माने नीचे को ये कहा जाता है। यहाँ देखो, संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते नहीं, जो इस ज्ञान को जानता, वेद माने जानना, जो इसको इस ज्ञान को जानता है वो हो संसार रूपी वृक्ष को पूर्ण मूल से तत्व से जानता, वह वेद तात्पर्य को जानने वाला है, वो सही ज्ञानी है। आगे देखिए, तीनों गुणों वाली उस संसार वृक्ष की, तीनों गुण रूपी, आगे बुलाओ थोड़ा, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल द्वारा बढ़ी हुई, ये जल द्वारा नहीं, प्रवर्धा माने वैसे फैली हुई, विषय प्रवला, विषय विकारों की शाखा माने शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे स्वर्गलोक आदि में, मृतलोक आदि में आई हुई। यही जो तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु, तीनों गुण रूपी कर्मानुबंधनी मूलानी, यही कर्मों में बांधन की इस जीव को मूल है, जड़े हैं और नीचे और ऊपर फैली हुई है। इसी अर्थ इसका ये बने है, क्योंकि ये जितना इनको ज्ञान है, बेचारे अपने कोशिश कर रहे हैं ठीक लिखने की, इसका सीधा अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसकी विधिवत साधना। अब गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए हमने इस चित्र का सहयोग लेना पड़ेगा। ये है ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पेड़। 15वें अध्याय पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 और 2 को समझना है। और वैसे तो सारी गीता जी इसके ऊपर आधारित है। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखाएं वाला ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। इसके साथ साथ हमने सूक्ष्म वेद सवसम वेद कबीर साहब की वाणी को साथ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। एक ही दोहे में ये गीता जी के 1 और 2 श्लोक दोनों कह दिए। ये ऊपर को जड़ है ये कबीर परमेश्वर है, अक्षर पुरुष एक पेड़ ये तो अक्षर पुरुष है नीचे का, ये मूल है। पहले यहां से चलेंगे, ये मूल जड़ जो है ये कबीर परमेश्वर है। जैसे उस लेखक ने अनुवादकर्ता लिखा कि आदि रूप पुरुष वाला, आदि पुरुष जड़ वाला, ये आदि पुरुष है, ये परम अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष तो अन्य जो तीनों गुण लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, ये कबीर परमेश्वर है। ये तो जड़े हैं, ये मूल है जहां से सबकी खुराक चलती है। और फिर अक्षर पुरुष, अब ये यहां से प्रारंभ होता है जब पृथ्वी से ऊपर जो होता है पृथ्वी के बाहर दिखाई देता है ये पेड़ कहलाता है, जड़ें नीचे होती है। ऐसे ये छुपा हुआ ऊपर को छुपा हुआ वास्तविक चीज जो पूर्ण परमात्मा है वो आदि पुरुष है, परम अक्षर पुरुष है, वो कबीर परमेश्वर है। ये तना अक्षर पुरुष एक पेड़ है और आगे देखिए परब्रह्म भी कहते हैं अक्षर पुरुष को। और इसमें से ऐसे ऐसे डार निरंजन वाकी डार, इस वृक्ष की ऐसी ऐसी मोटी डारें बहुत होती हैं, सैकड़ों की हजारों की संख्या में होती हैं। उनमें से एक डार तो ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। और आगे देखो, और ये तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार, ये तमगुण शिव जी, सतगुण विष्णु और रजगुण ब्रह्मा जी, ये तीनों शाखा हैं। और इनके ये पात रूप टहनिया ये देवता और सब नीचे के तीनों लोकों के ये जितने भी जीव हैं इन पर आधारित हैं, लेकिन मूल इनका कबीर परमेश्वर है। ये समझना हमने। अब इसमें लिखा कि जो इसको जानता है वो संत वेदवित समझो, वो सही ज्ञानवान समझो। अब देखिएगा आगे इसी होली बुक गीताजी में अध्याय नंबर इसी 15 के श्लोक नंबर 3 को देखिए। पहले ये 3 नंबर श्लोक है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। ये तो थोड़ा सा बताया है ये, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा ही इसके बारे में बता सके हैं। तथा इन की अच्छी प्रकार से स्थिति है, जैसे हम बता रहे हैं विशेष इतना ही नहीं है, मतलब ये कहने का भाव ये है। तथा इन इसकी न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति, हम जो बता रहे हैं इतना हमें ज्ञान नहीं परंतु ये अंदाजा सा बता रहे हैं, ऐसा ब्रह्म कह रहा है। इसलिए इस महंत मूल वाला अति दृढ़ मूलों वाले यानी ऊपर को अच्छी मजबूत जड़ वाले को संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग के शास्त्र द्वारा काटकर, काटकर का तात्पर्य है कि ढंग से सूक्ष्म वेद रूपी सही ज्ञान रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है, अर्थात इसको सत ज्ञान से समझा जा सकता है। आगे आगे ये पांचवा जो चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का, इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तथा माने इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर की देख लो सही दिखाया, जिस परमेश्वर की पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये काल भगवान कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। उसी की शरण मैं हूँ। ये परपदे पुरुषम परपदे मैं उसी की शरण में हूँ। सीधा सार्थ ये है। ये काल बोल रहा है, ब्रह्म तो बोल ही रहा है, वो कह रहा है मैं उसकी शरण में हूँ, सीधी बात। और फिर पांचवा देखो, स्पष्ट कर दिया कि मेरा भी परम धाम वही है जिसका मन और मोह नष्ट हो गया। यानी यहाँ से जो कति जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य सती थी और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। कहने का भाव ये है। अब देखो कितना निर्मल ज्ञान दिया है स्वयं प्रभु ब्रह्म ने। कह रहे कि मेरा भी वही परम, मैं उसी की शरण में हूँ और उसमें वही जा सकता जो यहाँ के बिल्कुल सारे ही, बिल्कुल सभी के सभी यहाँ की मेरे लोक की यानी काल के लोक की सभी प्राप्त होने वाली सुविधाओं को भूल जा कर सपने में भी नहीं चावे। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग के राज की भी इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए, तब हम यहाँ से निकल सकते हैं, तब हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा ही वेद में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और श्लोक नंबर प्रथम में। सीधा इसमें क्या लिखा है कि ईशावास्यम तक्तेन, तक्तेन माने त्यागा हुआ, रिजेक्टेड। ये यजुर्वेद का देखिएगा यहाँ पर, ये है यजुर्वेद मंत्र अध्याय नंबर 40 है, मंत्र नंबर 1 है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगतायां जगत तेन तक्तेन भुजिता मा गर्द कस्य स्विदं धनम्। ईसा माने दुर्गा, सर्वव्यापक, वास्य माने सर्वव्यापक परमात्मा का, तक्तेन माने त्यागा हुआ, इदं माने यह, सर्वं माने सारा, जगतायां माने जगत, जगतायां माने इस काल के द्वारा, ईसा दुर्गा और इस जगत के मालिक काल के द्वारा, जगत मानिए सारा चर प्राणी मात्र क्या है, तक भुजी था खाने वाली परंपरा से यत माने दुखी किया जाता है, उसकी मां गर्द कस्य स्विदम धनम, उसके किसी प्रकार के कोई भी धन की मां गर्द बिल्कुल इच्छा मत करो। तकतेन माने त्यागा हुआ, भुज माने खाना ही था, माने परंपरा से, खाने वाली परंपरा से दुखी तंग किया गया, ये सारा संसार दुखी है, इसलिए इस संसार की, इस ब्रह्म लोक की कोई भी इच्छा धन की मत करो, तब उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। अर्थात अगर इच्छा रूपी भक्ति करोगे तो वहां नहीं जा सकते। अब इसका ये अर्थ बना तो वही वहां जा सकता है अर्जुन, उस परम पद को सतलोक में, जो यहाँ के बिल्कुल सारी चीजें न भूल जाए, ना यहाँ का इंद्र बने, ना इंद्र की आवश्यकता महसूस करे कि मुझे कोई राज्य मिले, यहाँ की कोई पद पोस्ट प्राप्त ना करे, स्वर्ग के देवता नहीं बने, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी ना चावे, वो वहाँ जा सकता है। और कहता है मेरा भी परम धाम वही है, अर्थात मैं भी वहीं से आया हूँ। इसमें दो पंद्रहवें अध्याय के अंदर चौथे और पांचवें और छठे श्लोक में यह सिद्ध कर दिया कि इस चौथे में लिखा है कि उस परमात्मा की, उस परम पद की तलाश करनी चाहिए जिसमें चले गए, उनका फिर जन्म नहीं होता। अपने लिए तो कहते हैं भगवान, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, कहते हैं तेरे मेरे तो बहुत जन्म हो दिए। यही होली बुक, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर ये देखो 5 का 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। जिस हे प्रणतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। सीधा क्या भगवान ने, और यहाँ फिर इसी का प्रमाण दिया है। ये देखो इसके पश्चात ये वो चौथा दिखाया था, ये 15वां, ये अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4 है, वो 4 का 5 था। इसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को, उस परम परमात्मा को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर पुरुष यानी व्यक्ति लौट कर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से पुरातन यानी पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, इस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, मैं भी इसी की शरण में हूँ। निश्चय करके उस परमेश्वर के मनन और निधि धासन करना चाहिए। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, फिर भी सीधा सार था कि मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ। अच्छा आगे भी देखो, 5वें में लिखा है कि उसमें तो वो जा सकते हैं जिनका यहाँ मेरे लोक तय, यानी काल की कोई भी सुविधा, चाहे इंद्र बने चाहे महेंद्र बने, और चाहे यहाँ पर देव बने चाहे महादेव बने, इसकी इच्छा कति नहीं करे। अब देखो तो वो वहां जाएगा। अब जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में लौट कर नहीं आते, उस परम पद को न सूर्य, ये छठा है, प्रकाशित कर सकता है, ये छठा ऊपर मंत्र देखिएगा, ये 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न ही चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। अब काल भगवान कह रहा है कि मैं भी वहीं से आया हूँ, मेरा भी वास्तव में वो स्थान है जहाँ से जो जिसके बारे में हमने तलाश करनी चाहिए, वही परमात्मा सबका आदि कारण है, सबको रचने वाला है। इसमें दो से दो गई, एक तो अरागे 15 और 16 17 में स्पष्ट कर रखा है कि मैं तो सब प्राणियों के हृदय में हूँ, और 16 में कहा कि वास्तव में भगवान दो हैं, एक तो स्वयं के बारे में ब्रह्म सर पुरुष और एक पर ब्रह्म सर पुरुष है, वास्तव में परमात्मा तो कोई और ही है। यानी 15वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सारा का सारा बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे रखा है। अब ये आपने देखा, अब इन तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा का तात्पर्य जैसे हमने कोई पौधा बीजना है, उसको हमने सीधा बीजना चाहिए, सीधा उल्टा नहीं, उल्टा बीजेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकता। यहां देखिएगा, ये समझो सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, देखिएगा सीधा बीजा हुआ यानी शास्त्र अनुकूल साधना, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अब पौधे की जड़ नीचे होगी मिट्टी में गमले में, ये जड़ कबीर परमेश्वर है, ये गीता ने सिद्ध कर दिया। इसमें जल डालेंगे, खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, पूजा तक करेंगे इसकी, और फिर यहाँ से खुराक जाएगी ऊपर। देखिए अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पर ब्रह्म तना समझो, और ब्रह्म ये अक्षर पुरुष ये डार समझो, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब ये टहनी कोई बुरी थोड़ी लगेंगी अपन को, हमने बहुत प्यारी लगेंगी, ये पूजनीय नहीं है, आदरणीय है। अब हमारी दृष्टि इसी पर रहेगी। अब गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 का आशय, कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। कबीर परमेश्वर ने सभी वेद सभी गीता स्वयं ही सुषम वेद रूप में आके दिया वेद। अब ये देखो, हमने ऐसे प्रवेश करनी है, पूजा करेंगे इस मूल मालिक की, और फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु में, इसके अर्थात टहनियों का, तो ये कौन से हमने बुरे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। जो माली होगा उसको पता लगेगा। अब जैसे जो अध्यापक होगा वही बता सके बच्चे को सिलेबस कैसे पढ़ाना होता है, जो अध्यापक नहीं है तो वैसे ही अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो स्वयं भी बर्बाद हो रहे हैं और उन बेचारी भोली आत्माओं का अपना जीवन व्यर्थ करवा रहे हैं। अब ऐसे साधना अपने समाज में करवाई जा रही है, सभी भगत समाज में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम या सिख ईसाई। अब यहां से ये तीनों गुणों की पूजा हम ऐसे करवा रहे हैं, हमारे से संत कोई ब्रह्मा का, विष्णु का उपासक, कोई शिव का उपासक, ये अधूरे संत, उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। अब हम इस हमारे कबीर परमेश्वर ये मना करते हैं अपने भगवान कि ऐसे ना करो, इसको ये गलत कर रहे हो। ये नाराज हो जाते हैं कि हमारी पूजाओं को गलत बताते हैं, हमारे गुरुजियों को गलत बताते हैं। हम गुरुजियों को गलत नहीं बता रहे, हम तो साधना बता रहे ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं है, ऐसे है तो गलत है, और जैसे पहले दिखा था ऐसे है तो ठीक है। अब यहीं से प्रारंभ करते हैं और ओम नाम से शुरू करते हैं। ओम तो यहाँ आ गया, हमने यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये यहाँ से शुरू होगा और फिर इसमें से ये सारा पूजा हमने इस आदि मूल मालिक की करनी पड़ेगी और तब इनको फल लगेंगे, ऐसा बताना चाहिए। इसलिए तीनों गुणों की पूजा नकारा करते हुए अनादरणीय नहीं बता रहे कबीर परमेश्वर। गरीबदास जी कहते हैं, तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम उनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। पहले इनका आदर करो, ये हमारे बहुत नजदीकी साथी हैं, पर इनसे लाभ कैसे लेना है ये तो आपको नहीं मालूम, ये हम बताएंगे, ये दास बताएगा, क्योंकि मुझे इसका मास्टर बना दिया मेरे कबीर परमेश्वर ने, मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान का खजाना दे दिया इस दास को, अब ये दास बताएगा। अब प्राइमरी की जो पढ़ाई है वो भी दास कराएगा, जबकि इन संतों ने पहले करानी थी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण गाते हैं, इन्होंने ये प्रथम मंत्र का जाप ही देना चाहिए था, जो मैं आपको पहली बार दूंगा, दूसरा नहीं देना चाहिए था। ये तो ज्ञानी है ही नहीं, वेद को जानते नहीं, गीता में क्या लिखा ये जानते नहीं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी थी। जो प्रथम मंत्र देना चाहिए था ताकि हम धनी हो जाते ये यहाँ के, और फिर इनके साथ दो मंत्र मैं लगाता फिर बाद में, वो बहुत शीघ्र ही काम शुरू हो जाता। पांच मंत्र देने थे इन्होंने, जो शिव जी ने पार्वती जी को दिए, और फिर ये दास सतनाम देता, शीघ्र देता और ज्यादा लाभ होता। अब मैंने पहली पढ़ाई भी पढ़ानी पड़ती है और फिर सतनाम का जाप प्रारंभ करवाना है। सतनाम 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 ऐसे नहीं, वो सच्चा नाम, और फिर उसके बाद आपको सारनाम मिलेगा। सारनाम नहीं मिला, मिले का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने सतनाम प्राप्त हुआ इस दास से, क्योंकि मर्यादाहीन प्राणी से, संत से नाम लेना व्यर्थ होता है, चाहे वो कितनी बात बताना बनावा, कितना मीठा बोला है, और चाहे कोई दादा लाई बना रखी हो, मेरी तो दादा लाई गद्दी है, हमारी तो 8 फीट 10 फीट की गद्दी आ रही, उन गद्दियों से भगवान नहीं मिल सकता। गद्दी तो एक नंबरदारी बना रखी है, प्रथम पुत्र उस गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का जो होगा वही गद्दी पर बैठाया जाएगा, चाहे वो शराब पीवे, चाहे मुकदमे करे, चाहे किसी की बुरी करे, वो अधिकारी बांध लिया। ये ऐसे नहीं चलता भक्ति मार्ग, ये तो उस रखवाल बनाए रखने के लिए, उस ऐतिहासिक स्थल की, उस धार्मिक स्थान की एक मर्यादा, वहां की यादगार की सुरक्षा के लिए ठीक है, वो मर्यादा एक मैनेजर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे भक्ति नहीं चल सकती। और यही कबीर साहब बताया करते, ये गरीबदास जी बताया करते, और इसी के कारण उन अज्ञानी संतों ने, अधूरे संतों और मेहनतों ने, अब अगर इस बात का दर्द होगा जिसको, वो अधूरे होंगे। अधूरों को ही दर्द होता है, जो पूरे होते हैं वो समझदार होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलते, सत्य कही जा रही है, शास्त्र हमारे मूल संविधान है, उनको दर्द होगा और वो गुमराह करेंगे, वो जो है ईर्षा भी करेंगे इस दास से, वैसे करो कोई दिक्कत नहीं, ये तो होती आई है। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास जी तू इस कथा का प्रचार कर, इस सृष्टि रचना सुना जन जन को जाके। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु मैं सुना तो तू, पर कोई सुनता ही नहीं, मैं तो खूब कोशिश कर ली, मेरी बात को सत्य नहीं मानते, और अगर मानने की कोई चेष्टा करता है तो ये पुराने गुरुजी नहीं मानने देते हैं, ये तो उल्टा जो है मुझे भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं, आखिर के तू कहां से ले आए ये ज्ञान, क्यों बहकाता है दुनिया को मूर्ख। कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास जो मम संत, जो संत मम सत, जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, सत भक्ति मार्ग ने और सच्चे नाम का जो दृढ़ता पूर्वक ज्ञान देगा उसके संग सब राड बढ़ावे। अस संत मंथन की करनी और धर्म दास में सुनाऊ करनी, उसमें ऐसे इन संतों और महंतों के ये लक्षण होंगे जो अधूरे होंगे, उनके पास ज्ञान तो पूरा होगा नहीं, दुनिया में बहका रहे होंगे, अपने पीछे लगा रहे होंगे, और फिर उनको उनको पता लगेगा घोड़ी आत्माओं को कि ये तो अनजान संत का फंस गए तुम, फिर वो उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे गुरुदेव से उन्हीं के शिष्य। तो पहले पुराना समय था उसमें शिक्षा थी नहीं हिंदुस्तान में, जब कबीर परमेश्वर आए और गरीबदास जी को कबीर साहब ने सतलोक दिखाया, सतलोक दिखा करके फिर कहा कि आप बच्चा प्रचार करो मेरी वाणी का। गरीबदास जी ने कोशिश की लेकिन यही रूढ़िता रूढ़िवादिता फिर आगे अड़ गई, उसमें शिक्षित नहीं थे, तो सतगुरु ने अपना एक पूरा ज्ञान लिखकर एक कलम बंद करवा गए, वो जो आज काम आ गया हमारे। अब इस दास पर कृपा करी है, 7-8 वर्ष के अंदर 8-9 वर्ष में 2.5 लाख संगत बिल्कुल नए सिरे तक बुद्धिजीवी, और खूब कई कई बार समझा करके कहा कि नाम लेना है पहले सोच समझ के लेना, कोई पूजा नहीं करोगे अन्य जो दास बतावे ऐसे करनी होगी, चाहे कुछ भी कहो फिर तुम्हारे को कोई भी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी छूना भी नहीं है, पीना भी नहीं, पिलाना भी नहीं है। इन सख्त मर्यादाओं को निभाते हुए 2.5 लाख संगत आज कबीर परमेश्वर की फिर होगी, उसी की रजात है। दास तो एक उनका डॉग है, एक उनका कुत्ता समझो, और आप धनी व्यक्तियों को, आप भक्ति के धनी हो, आपको जगाने के लिए मेरी ड्यूटी ला दी, और मैं ऐसे ही भौंकता रहूंगा अंतिम श्वास तक। तो कबीर साहब ने कहा था कि जो मेरा संत सत बारक दर्शन करेगा उसके साथ उस समय के वो अधूरे संत अधूरे मंत्र और गुरुजी वो राड बढ़ाओगे, और ये उनके लक्षण होंगे जो अधूरे होंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब ये पर्दे पर आ रही है। पहले तो कह देते थे कहां लिखा गीता में, ये वैसे ही कह रहा है, झूठ बोलता है, अब कोई नहीं बोल सकता। अब यूं नहीं बोल सकता कि पर्दे पर सामने है। अध्याय नंबर है और पुस्तक का सामने टाइटल है, कोई भी देख सकता है, कोई नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहा था। अब तो वो कहेंगे कि नहीं हमने आंखों देखा गुरुजी, और फिर जाकर के उनको देखते हैं पुस्तकों को। हमारे पास कई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा इस परिभाषा प्रभु की टीवी चैनल पर देखकर आए, और उन्होंने हमें अपना बताया कि पहली बार जब हमने सुना तो ऐसा लगा जैसे आप झूठ बोल रहे हो, और कहां से आ गया ये संत ऊटपटांग बोल रहा है। जब आपने वो प्रमाण दिए, गीता जी दिखाई कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तो हमने वो नोट किया। फिर बताते हैं कि हम पहुंचे लाइब्रेरियों में, कुछ पुस्तकें अपने पास थी वो देखी, उनमें भी वही मिला। लाइब्रेरियों में देखी 10-10, 12-12 टीकाकारों की गीता जी, उनमें भी वही मिला। उस दिन के बाद हथियार रख दिए, अब जो ये कह रहे हैं संत वो सत्य है, बाकी असत्य है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं तो एक आपके बीच में एक मीडिया हूँ, इनको सामने दिखाने और बताने का। इस दास पे रजा भी प्रभु कबीर साहब की, मेरे गुरुदेव की, उन्होंने मुझे खजाना दे दिया कि ये यहाँ रखा है, यहाँ दाब रखा धन मैंने, और ये निकाल ले और बांट दे अपनी प्यारी आत्माओं को। अब ये सत्ज्ञान रूपी धन के जो ग्राहक होंगे, जो वास्तविक इसके सौदागर होंगे, उनको मिलेगा। अब प्रश्न चल रहा है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देसरा ही। भक्ति रूपी जो धन अब इकट्ठा करना है उसको शास्त्र अनुकूल ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, ये गीता प्रमाण देती है। और गीता भक्ति मार्ग की 2nd नंबर पर आती है। प्रथम नंबर पर कबीर परमेश्वर की वाणी और प्रथम के सब हेड समझ लो, प्रथम का सब हेड समझो, दूसरा नंबर नहीं कह सकते, उनके सब हेड यानी वो प्रभु और नीचे उनके उन्हीं पुण्य आत्माओं की, उन प्यारी आत्माओं की वाणी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय मुलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, दास जी की जो वाणी है, लेकिन उनमें मुख्य कबीर परमेश्वर की है। अन्य संतों ने अपनी महिमा अपने प्रभु की कलम तोड़ गई है, वो एक ही नंबर कहो चाहे उसका सब हेड दूसरा उसी में, और सेकंड नंबर कहो चाहे उसको तीसरे नंबर पे वेद और गीता, वेद और गीता में के पैरेलल आ जाती हैं पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद और गीता जी एक ही है, होली बुक्स, ये सभी होली बुक्स हैं, ये एक लेवल का ज्ञान देती हैं। और जैसे पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ के अंदर जो ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में है वो सही है, उनका जो आदेश है वो तो 100 का 100 सत्य है, बाकी जो फरिश्तों के अन्य एंजलों के देवताओं के जो किसी के अंदर प्रवेश करके बोला है वो वहां तक ही ठीक है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के तुल वो नहीं है, जो उन्हीं में जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा का वो सही है, बाकी जो नियम है बाद में जो बोले गए हैं वो काल के फरिश्तों द्वारा और उसी के देवताओं द्वारा या उसके स्वयं द्वारा किसी के अंदर प्रवेश करके वो उतने पूर्ण नहीं है जितने उस पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान है। तो इनके अनुसार जो हम साधना करेंगे वो हमारी सफल होगी। तो कहा कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जाता है काया देश राही, लोहे को जैसे गर्म कर दें और गर्म कर उस गर्म गर्म पर ही कोई चोट लगा दें तो हम जो उसका इंस्ट्रूमेंट या कोई अन्य थिंग कोई दूसरी वस्तु बनाना चाहते हैं, गिलास है कटोरी है, तो उसके लिए हम इतना मेल्ट करेंगे सोने को, उस लोहे को इतना मेल्ट करेंगे, इतना पिघला देंगे, गर्म कर देंगे कि पानी की तरह हो जाता है, और उसी टेम्परेचर में उसी ताव में अगर तुरंत ही किसी दूसरे मोल्ड में डाल दिया जिसमें डलते ही उसका शेप बन जाएगा जो बनाना चाहते हैं, और यदि थोड़ा सा ठंडा हो गया तो वहीं वो सेट हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर दोबारा भी गर्म करना होगा, उतना प्रोसीजर फिर लगाना पड़ेगा। ऐसे ये मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहे के साथ ताव है, ये गर्म है लोहा, अब जैसा बनाएंगे बन जाएगा, अगर हम कुसंगत में गिर गए तो बुरे कर्म करेंगे, दारू शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, हुक्का पियेंगे, ताश खेलेंगे, चोरी करेंगे, डाके मारने लग जाएंगे, और उन्हीं भगवान आत्माओं को जो मनुष्य शरीर में है उनको सत भक्ति सत संत मिल गया, अच्छा सत्संग मिल गया, वही देव बन जाएंगे। तो इसमें जो लोहे के साथ ताव है अब जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और बाद में कुछ नहीं बन सकता, ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा, उसके बाद गधे और कुत्ते सुअर और सुअरी की वो टेढ़े मेढे यानी विकराल स्वरूप मिलेंगे, हमें शरीर मिलेंगे, ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। क्या बताया फिर कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, जैसे मृत लोक में हमने अपना मेहनत की कोई पुण्य दान किए वो फिर स्वर्ग में पहुंचे, स्वर्ग में कमाई की अपने कर्माधार पे, और फिर नरक में गए अपने कर्माधार पे, तो यहाँ कहते हैं तीन लोक और भवन चतुर्दश पाताल लोक में गए, इन 14 लोकों में जो भी प्राणी हैं अपने कर्म को ही भोग रहे हैं, ये सब सौदा ही कर रहे हैं, और दुगने तिगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही, जिस पुण्यात्मा को सही भक्ति पूर्ण संत मिल गए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिल गई, उन्होंने इस मानव शरीर के दुगने तिगने चौगने कर लिए, और जिन्होंने ये सत भक्ति नहीं मिली वो बेचारी पुण्यात्मा भक्ति कर भी रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उन्होंने गुरु भी बना रखे हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते, ये गीता जी बता रही है। उन्होंने मूल गवाही, मूल माने मूल पूंजी, जैसे किसी ने बताया था मैंने आपको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट से लोन ले लिया, उससे आगे व्यापार बढ़ाकर दुगना तिगुना बनाने थे, 2 लाख के 4-5 बनाने थे, और गवर्नमेंट टैक्स को लोन भी उतारना था, उसके स्थान पर उसने सत भक्ति की नहीं और सही ढंग से उसकी वो बना नहीं तो फैक्ट्री फेल होगी। इसी प्रकार हमने इस मनुष्य से अपना जीवन सफल करना है, भविष्य बनाना है और मुक्ति को पाना है। ये तन टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगा माही, ये शरीर ये पिंडा ये शरीर फूटेगा, पिंड समाप्त होगा और उस भगवान के दरबार में फिर इसका हिसाब होगा, अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, उस दरबार में फिर कोई नहीं छुटा सकता। यम के दूत गड़ेंगे, वो कूटेंगे डाल करके इस प्राणी को, चाहे वो आज पृथ्वीपति हो और चाहे वो कितना ही पूंजीपति हो। जिसके पास सत भक्ति नहीं है तो वो बहुत कष्ट होगा उसको। फिर बताया कि दास सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, जन्म और मृत्यु को जो छुटवा दे वो संत मेरे लिए पूजनीय है। अब जैसे गीता जी में आपने सुना है कि अर्जुन तेरे और मेरे, यहाँ का भगवान कह रहा है ब्रह्म कि तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो लिए। भाई तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है, तू नहीं जानता, क्योंकि काल की भी मृत्यु होती है, ये बहुत समय के बाद होती है, इसलिए इसकी मृत्यु को कोई नहीं जानता, ये स्वयं ही जानता है। तो फिर अन्य कौन बचेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ बचेंगे? ब्रह्मा विष्णु देश के महेश के पिताजी हैं, ये काल भगवान ज्योत स्वरूपी निरंजन जो गुप्त रहते हैं, जो अव्यक्त हैं। अव्यक्त का अर्थ होता है वो विद्यमान है, वो व्यक्तिगत यानी आकार में, लेकिन वो सामने प्रकट नहीं होता, उसको अव्यक्त कहते हैं। ऐसे परब्रह्म भी अपने आकार में है और पूर्ण ब्रह्म भी आकार में है, लेकिन वो सामने नहीं आता, इसलिए अव्यक्त कहलाता, उसको फिर हमने आकार रहित मान लिया। अव्यक्त का अर्थ होता है जो हो वहां पर विद्यमान हो, लेकिन सामने हमें दिखे नहीं, हमारी पहुंच से बाहर हो, रेंज से बाहर हो, हमारी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, इसलिए उसको अव्यक्त मान लिया। लेकिन वो अपना सूक्ष्म रूप भी बना सकता है, हमें दिखाई ना देवे, रहेगा आकार में ही ऐसा ही, लेकिन इतना बारीक हो जाता है, इतना सूक्ष्म बन जाता है, वो आम व्यक्ति को नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसका आकार ही रहता है। वो दिव्य दृष्टि न्यारी है जो उसको देखा जा सकता है, वो उस पूर्ण परमात्मा के सार नाम से बनती है, और फिर हम यहाँ बैठे भी देख सकते हैं उन तीनों स्वरूपों को, तीनों स्थानों को, स्वर्गों को, सबको देख सकते हैं। लेकिन ये हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारी कमाई व्यर्थ होती है। हमने अपनी कमाई को संग्रह भी रखना है ताकि ये आगे हम निकलने के यहाँ से काम आवे। आगे बताया है कि ये शरीर जब छूट जाएगा तेरा, यानी मृत्यु होगी, उस समय क्या करेंगे सब परिवार के सदस्य और भाईचारा, कुल के लोग इकट्ठे होंगे और उठाएंगे तेरे जनाजे को और ले जाएंगे वहां पे, तेरी शमशान घाट पर ले जाएंगे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया, फिर मरहट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वहां फिर चिता के ऊपर कहते तुझे तो जला देंगे, शरीर को तो तेरे को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, फूक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर क्या कहें, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गुरुड़ पढ़ाई, पंडित माने गुरुजी, वो मेरे जैसे अनजान जो स्वार्थवशित भोली आत्माओं को उलझाए बैठे हैं, वो आएंगे और कहेंगे अब इसका गुरुड़ पुराण का पाठ करवाओ। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी अपने कबीर परमात्मा का आदेश ही सुना रहे हैं जो उनका संविधान है। कहते हैं कि वो जीव आत्मा जो उस मानव शरीर में थी, जो भक्ति नहीं कर सकी, विधिवत साधना नहीं कर पाई, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं किया, शास्त्र विरुद्ध पूजाएं की उन अधूरे गुरुओं के आधार पर, वो प्रेत बन गई, भूत बन गई, गधा बन गई, कुत्ता बन गई, और पीछे से गरुड़ पुराण का पाठ करवावे। वो कबीर परमेश्वर कहते हैं कि उस प्यारी आत्मा को जब वो मानव शरीर में था, उसको वो सत भक्ति करवानी थी पूरे संत ने, और विधिवत साधना करवानी थी, ना वो भूत बनता, ना पितर बनता, ना कुत्ता बनता, ना गधा बनता, और वो अपना मुक्त हो जाता। वो तो जाकर के भूत या गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है और पीछे से गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जा रहा है। वो तो गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना था, उसमें क्या लिखा है कि इतने भयंकर ज्ञान दिया है कि जो इंसान ढंग से पढ़ ले और उसको सत्य मान ले कि वास्तव में सत्य सत्य तो है ही है, हम बालक हैं, हमें सत्य नहीं लगता क्योंकि हम ज्ञान कम है, हमें अबोध बच्चे हैं हम, और जिसके कारण हमने उस शास्त्रों में लिखी हुई सत्य भी स्वीकार्य नहीं हो रही। ये भी नहीं कि हम इनको असत्य भी नहीं मानते और सत्य भी नहीं मानते, क्योंकि हमारी बुद्धि इतना काम करती नहीं, हम बालक हैं। यदि पहले वो बातें सही सत्य समझ में आ जाती, क्योंकि संत स्याना कर देते हैं सत्संग के माध्यम से, और फिर ये डरने लग जाता है। अबोध बच्चा नहीं डरता, वो चाहे सर्प भी पकड़ ले, अग्नि में भी हाथ दे सकता है और मना भी करते रहते मत जाना मत जाना, वो सुनता भी रहता और फिर भी हाथ दे देता है। ऐसे हम ज्ञान में अबोध हैं, बालक है, अभी ज्ञान सही नहीं मिला कि वास्तव में ये जोंका क्यों है, तो वो बेचारा ज्ञानहीनता के कारण अबोध के अबोधता के कारण ऐसे कर्म किए जिससे वो प्रेत बने, गधा बने और कुत्ता बने की तैयारी होगी, और पीछे से गरुड़ पुराण पढ़ा अब के सारा लगे। ये तो उन ठगों ने अपने एक दुकान चलाने के लिए चला रखा है, कैसे कर दो यहाँ तेर मना दो, तेर माँ कर दो, यहाँ पाठ करवा दो, अपना पहला उस पहले उसको जमा मिल जाए उस जैसा तो लाभ है ही नहीं। अब क्या कहते हैं गरीबदास जी के वेद बांध फिर पंडित आए, पंडित माने विद्वान, जो अधूरे विद्वान है वो गुरु जी, पीछे गरुड़ पढ़ाई और फिर बताते नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बोरे कहीं कुरुड़ी चरने जाई। आज मानो शरीर में हम कितने अच्छे आहार करते हैं, कभी दूध पीते हैं, कभी चाय बनवा लेते हैं, कभी बिस्कुट खावे, कभी लड्डू, कभी जलेबी, काजू और किशमिश, सेब संतरे और बढ़िया खाना, रोटी सब्जी दाल है, और फिर क्या खाएंगे जब प्रभु की विधिवत साधना ना मिलेगी, पूरा संत नहीं मिला। ये 56 भोग कि गद्दा बैल बनाई, गदा या बैल बनेंगे, कितना कठिन कार्य होगा गधे का। अब हमने जरा सी लगती है क्योंकि समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी बढ़िया मकान मुकुन सभी ने तकरीबन बना रखे हैं और समय पर खाना प्राप्त हो रहा है, और फिर शाम ने गुटी ला ले, शराब पीने को मिल गई, फिर लंबी सिगरेट लौको शुक्र को चले, ये तो 2 दिन के डमडमा भाई, फिर कुछ कोई ना हाथ कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इससे को हमने सदुपयोग करना था। अब हम ये सोच रहे हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ा गधे बन जाएंगे और क्या बनेंगे भाई, या तो फिर शास्त्र गलत, और शास्त्र गलत नहीं हो सकते, हम गलत क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी। अब ये समारा जो मनुष्य जीवन है इसी में हम कुछ कर सकते हैं, इसमें हम ये सोचे नहीं ऐसे कैसे बन जाएंगे, हमें तो मौज हो रही है, आगे भी ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। गरीबदास जी कहते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा बरना रे, तू सोचा मैं ऐसे मौज करता रहूंगा आज जो मनुष्य शरीर में है, लेकिन नहीं, वहां तो श्वास श्वास का हिसाब है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन प्रभु के दरबार में है। ये गद्दा बैल बनाई, अब गधे का जीवन अगर इंसान देख ले, थोड़ा सा विचार कर ले, होगा विचार, विचार कब होगा जब हम सत्संग सुनते रहेंगे और फिर रात को भी डर लगेगा, स्वप्न में भी डर लगेगा, ही भगवान कहीं हमारी भक्ति ना बिगड़ जावे और कहीं हमारे ऊपर वो कैर टूटे 84 लाख जूनियों का। अब गधे का जीवन देखे है परमेश्वर, आपको तो मैं पता नहीं पर मेरा तो सर्दी सी चढ़े और दिल यूं करने लग जाता है, मालिक कहीं अब के ना पैर फिसल जाए इस भक्ति तें, और फिर बैल बने, क्योंकि हमने मालूम है अपने जीवन का, हम अपने खेतों में जब जाते थे उस बैल के क्या हालत होती थी। एक बैल था हमारे घर पे और उस बैल के पैर में कील लगी, इतनी लंबी कील, उसके ऊपर का जो कैप नहीं था उस कील का टूटा हुआ रिजेक्ट करके गली में डाल दी किसी अनजान ने, हाल ही सुबह सुबह बहल को लेकर के खेतों में जा रहा था, उसके पैर में वह कील चल गई। वह कील इतनी लंबी कील पूरी खुरों के बीच में गट गई, अंदर दिखाई भी नहीं दे और पैर से लंग करता हुआ वो बैल खेत पहुंच गया। हाली ने सोचा ऐसे कोई नस पे नस चढ़ गई होगी और काम लेता रहा। शाम को घर पर पहुंच गया लेकिन तीन पैरों के आधार पे घर पे आकर बैठ गया। वो बैल बैठ गया तो सुबह नहीं उठा, ना खान चारा चरा उसने और आंखों में पानी पड़े और बुरा हाल, पैर में सोई आ गई। तो घरवालों ने देखा नहीं ये उठ रहा है, तो देखा हाली ने किसके तो सोई आ गई है। ऐसे गांव में वैद होते थे, वो वैद बुलाया, वो कहने लगा इसके गोड्डे में कोई मोच आई है या कोई बाव आ गया है, गर्म पट्टी घुटनों पर बांधने लगे गोड्डों पे। 30 दिन तक वो बैल ना उठे ना बैठा, बैठा ही रहा उठ नहीं सके और बैठा बैठा टट्टी करे, खाना चारा भूल गया बेचारा। अब मुख से बता नहीं सकता मेरे पैर में कील लगी है, आंखों से पानी बह रहा है, डरता मुंह को बाक ऐसे मुंह खोल करके लेट जाता है। डर बहुत, दर्द बहुत हो रहा था। 1 महीने के बाद वो जहाँ कील लगी थी वो कील लगी हुई खुरों में और पट्टी बंद रही घुटनों पे ऊपर गोड्डों पे। अब वो बोलकर भी नहीं बता सकता जो कहा करता, किसने देखा भगवान है। अपलातून लगा के लंबी सिगरेट और शाम ने घुटी, दिन में सिनेमा रात ने सिनेमा और दिन में कुबद कुमावे। चाहे ना भी बुरे कर्म किए और भक्ति ठीक ना बनी तो भी बुरा हाल होगा। अब 30 दिन के बाद वो अपने आप खुरों के बीच में वो फूट गया, फूट करके उसमें रेशा निकला। रेशा जब निकला जब देखा हो इसके तो खुरों के बीच में यहाँ पर जख्म था, ये कोई चीज लगी है। फिर बुलाया एक ऐसे चिमटी सी लेकर आया, उसने पकड़ कर अंदर से खोदा थोड़ा सा और फिर पकड़ के खींचा, इतनी लंबी कील निकली। वो बात अब याद आती उस दास को, हे परमात्मा जब ये वाणी पढ़ी संतों की, यो ज्ञान सुना, आंखों से आंसू आ जाती हैं उस दृश्य को देखकर। ना बोलकर बता सकता है कि मेरे पैर में दर्द है या मेरा कहां चोट लगी है। आज हम मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, ये संतों की वाणी अगर हृदय में पहुंच जाए, जीव बुरा कर्म नहीं करे, भूखा सो सकता है, अपनी सुविधा भी प्राप्त नहीं करेगा। मालिक चरणों में रखना। आज हम अपने भौतिक सुविधाओं को एकत्रित करने करते करते ना जाने कितना जुल्म कर दें, किसी की आत्मा दुखाते हैं, किसी का कुछ करते हैं और फिर ये भोगना पड़ेगा और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं रहेगा, किस्मत से भी ज्यादा मिलेगा जब कबीर परमेश्वर के चरणों में पूरे संत के माध्यम से आएंगे, अधूरों के माध्यम से नहीं। ये परमात्मा हमारे कर्म से ज्यादा भी देगा, ये कबीर परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। ये कर्म की रेख को मिटा देता है। वेद में लिखा है कि वो अंगारी कबीर रसी, वो कबीर परमेश्वर है जो पाप काट सकता है। अग माने पापों को, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों को काटने वाला। और जीवन के आयु भी बढ़ा देने वाला वो कबीर परमेश्वर है। ये 56 भोग कहां मन बोरे, कुरड़ी चरने जाई। और वेद बांध फिर नरसे तीतु पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। फिर बताया कि प्रेत सिला पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड बरवाई। ये शास्त्र विरुद्ध साधना करके श्राद्ध निकाल निकाल के पीपल के चक्कर काट के और ये अधूरी साधना कर करके तीनों गुणों तक की भक्ति हम करके ऐसे 84 लाख चोनियों में फंस गए और फिर प्रेत बने पितर बन गए। पहले तो गलत साधना करवाई नकली गुरुओं ने, गीता के विरुद्ध श्राद्ध निकलवाए, अच्छी तरह विधि बताई और शिव को मृत्युंजय बताया कि ये सर्वशक्तिमान है भले आदमियों। अब उन संतों की बुद्धि देखो कितने काम करे, जो एक पीतल को सोना बता रहे हैं, 10 के नोट को 1000 का बता रहे हैं, वो कैसे ज्ञानवान होंगे। अब उनके पीछे जो लग रहे बोढ़ी आत्मा, वो कहां ले जाएंगे आपको। इन बातों को विचार करना होगा। बेशक से अरदास की बात कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी नहीं ये मीठी होंगी, ये कुनीन है। और ये कुनीन आपके अंदर जाके इन कानों के माध्यम से इंजेक्शन लगेंगे और ये फिर अंदर से अपनी प्रक्रिया करेगी। आप विवश होगे इन शास्त्रों को देखने के लिए और विवश होगे उन गुरुओं से प्रश्न करने के लिए कि हमें कहां ले जा रहे हो, तुम स्वयं भी जा रहे हो नरक में और हमें भी ठोक रहे हो। लाखों की संख्या में ठेका ले लिया तुमने इन जीवों का, अपने स्वार्थवश अपरभूता बनेगी इनकी, अपरभूता होगी, बहुसंख्या में शिष्य होगी, ये कैसे उल्टे उल्टे हटना पड़ेगा। कल नाम कुत्ते बनेंगे, खाज लगेगी, खारिश होगी, टांग टूटेगी दोनों, फिर ना शिष्य साथ देंगे, ना ये आश्रम साथ चलेंगे, ना ये फैक्ट्री साथ चलेंगी। हमने अभी से उल्टा कदम लेना पड़ेगा, शास्त्रों को पुनः देखना होगा और इस दास को अपना दास समझ के परामर्श कर सकते हो इस परमात्मा के बारे में। दास से कोई गलती हो रही हो, मान ले मैं कोई गलत कह रहा हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूंगा और मैं आपके अगर सत्य होगा शास्त्रों के अनुसार मैं स्वीकार करूंगा, बिल्कुल स्वीकार करूंगा। मैं किसी को नहीं देखूंगा, चाहे कोई मेरा शिष्य रहो चाहे मत रहो, मुझे अपना कल्याण प्रथम है, सेकंड में दूसरों का। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात आ कहे वो बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उत्तर लेकर कह मीठी बात। बीजक की बात आ कहे बीजक ना ही पास, दुनिया को प्रमोद के ये आप जावे निराश। औरों को तो प्रवचन कर रहे हैं, स्वयं खाली जाएंगे शास्त्र विरुद्ध साधना करके। बहुर श्राद्ध खान को आए काग वे कलमाई, वह मेरे जैसे नकली गुरु बताओ, श्राद्ध ऐसे निकालो जो गीता विरुद्ध साधना पाठ्यक्रम के विपरीत। बाहर से जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो बच्चा सफल नहीं हो सकता, वो गुरु वो शिक्षक ठीक नहीं, ये सीधी सी बात है। तो अब पहले हमारे वो गुरु क्या किया करते थे, कहते हैं श्राद्ध निकालो तुम्हारे दादा दादी का, पितर बन गए वो। अच्छा फिर वो आते श्राद्ध निकालने, पहले बढ़िया खाना बनाते स्वयं और फिर ऊपर रखते सबसे पहले, कहते हैं ये तेरा दादा दादी तेरे पिताजी, ये देखो ना ये कौवे बन गए हो मनमाने, और देखा ना कौवा खा गया, नीचे डाल दो, हो सके कुत्ता ही बन गया हो। ये ज्ञान था उनका। अब वो कौवा बन गया हमारा दादा या दादी पिताजी या माताजी। अब कौवे को 364 दिन में से 365 दिन में से एक दिन तक भोजन दे दिया, 364 दिन क्या खाओगा वो पिताजी कौवा, वो पिताजी कुत्ता ही बन गया हो तो 364 दिन क्या खाएगा, बताओ। ये अकल थी हमारी, क्या करें गुरुजी जैसा बता देते हैं, गुरुजियों की बात विश्वास करना पड़ता है, लेकिन नहीं अधूरों की नहीं। अब 364 दिन वो बेचारा भूखा रहा। यदि हमारे दादा दादी माता पिता 364 दिन पहले उपवास रखते होते और एक दिन भोजन पाते होते तो हम खुश थे, बहुत अच्छा, ऐसा ही करते थे वो पहले भी, नहीं ऐसा नहीं था। ये अनजान संत अनजान मार्गदर्शक ही ऐसा बता रहे हैं। आगे फिर बताया कि प्रेत शिला पर जाय विराजे, ये पिंड भरवाना ये भूतों की पूजा है, श्राद्ध निकालना ये पितरों की पूजा है, भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर, ज्यो का त्यो मुक्त नहीं हो सकते। और बन गए तभी तो वो आज उनके श्राद्ध निकल रहे हैं, नहीं हमारा कोई श्राद्ध नहीं निकालेंगे, हमने कह दिया पहले से। और जिन्होंने नाम ले लिया हमारे से उनकी कोई श्राद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस दास से जिसने उपदेश ले लिया अपने कबीर परमात्मा का, उसको कोई श्राद्ध नहीं निकलवाना, ना उनके यहाँ से कोई फूल फल उठाने, इस मिट्टी को कहीं डाल देना, फूक देना, जला देना, चाहे पानी में डाल देना, कहीं डाल देना, इसका अंतिम संस्कार करना ताकि इसमें बदबू ना उठे। इस मिट्टी का हमने सदुपयोग कर लिया, अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर इसकी कहीं फिर इसको उठा करके गंगा में डालने जाएंगे, ये अधूरे संतों के काम। पहले उनको भूत बनवाया और फिर उनके पूर्वजों को वैकांड खत के लिए 13 दिन फिर क्रिया की, और फिर उन्होंने कहा अभी नहीं कार्य और करना, इसका वो रह गया अलग से, पीछा नहीं छोड़ा एक साल तक, तो हमारा ये सब टंटा कट गया। क्या कहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। यदि हम पूरे परमात्मा के पूरे संत मार्गदर्शक संत का उपदेश ले लेते ये सकल कर्म कट जाई, ना भूत बनते ना पैतरे ना श्राद्ध निकलवाने और कुछ भी दुख ना होता। या तो मुक्त हो जाएंगे हम और नहीं अपने कबीर परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि उनका एक यहाँ इस ब्रह्मांड में भी स्थान है, उनके चरणों में चले जाएंगे और फिर हमारा जो भक्ति युग आओगे फिर जन्म देगा। जैसे अब ये भक्ति युग शुरू हो गया 600 साल के बाद, स्वयं कबीर परमेश्वर आए थे विक्रमी संवत 1455 से विक्रमी संवत 1475 तक रहे, सन 1398 और सन 1818 तक, सन 1518 तक, क्षमा करना सन 1398 से 120 वर्ष रहे 1518 तक। अब ये 600 साल के बाद लगभग 550 वर्ष के बाद अब फिर उसी परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति की दया हुई है, अब ये भक्ति युग सत भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। अब जितने भी हमारे से उपदेशी प्यारी आत्मा है अब उनके घर जो संतान आवेगी वो बच्चे आवेंगे, वो आत्मा आवेंगी जो पहले कबीर साहब के दरबार में बैठी इंतजार कर रही हैं कि हमें कब मनुष्य शरीर मिले और फिर हम सत भक्ति करें, कब प्रभु आवे सत भक्ति दर्शन करे या अपना कोई संत भेजे। दास को भेज दिया उन्होंने, अपना पैगंबर बना के कबीर परमेश्वर ने, अपना दूत बना के, अपना कुत्ता बना के और इसको भेज दिया और आदेश दे दिया प्रभु के गुणगान का।